समानांतर चेतावनियां संख्या एक। यीशु मसीह का प्रकाश इत वाक्य मानव जाति के लिए अंतिम चेतावनी को समझना।
यीशु मसीह का प्रकाश इत वाक्य तब परमेश्वर की प्रजा के लिए खुलता है जब समय निकट होता है। मानव जाति के लिए अंतिम चेतावनी संदेश मानव के परीक्षा काल के समाप्त होने से ठीक पहले दिया जाता है, और वो अंतिम संदेश बाइबल की कई भविष्यवाणी संबंधी खंडों में दर्शाया गया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में वो अंतिम चेतावनी संदेश तीन स्वर्गदूतों द्वारा दर्शाया गया है।
और मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के मध्य उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों और हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों को प्रचार करने के लिए शाश्वत सुसमाचार था। वो ऊंचे स्वर से कह रहा था, परमेश्वर का भय मानो और उसे महिमा दो, क्योंकि उसके न्याय की घड़ी आ गई है, और उसकी उपासना करो जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। और उसके पीछे एक और स्वर्गदूत आया ये कहते हुए, बाबुल गिर पड़ा, गिर पड़ा वो महान नगर, क्योंकि उसने अपने व्यभिचार के क्रोध की मदिरा से सब जातियों को पिलाया। और तीसरा स्वर्गदूत उनके पीछे पीछे आया ऊंचे स्वर से ये कहता हुआ, यदि कोई मनुष्य उस पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना करे और अपने ललाट पर या अपने हाथ पर उसका चिन्ह ले, तो वही परमेश्वर के क्रोध की उस दाखमधु को पिएगा जो उसके प्रकोप के कटोरे में बिना मिलावट उंडेली गई है। और वो पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने के सामने आग और गंधक से यातना पाएगा, और उनकी यातना का धुआं युगानुयुग ऊपर उठता रहेगा। और जो लोग उस पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना करते हैं और जो कोई उसके नाम का चिन्ह लेता है, उन्हें दिन रात कभी विश्राम ना मिलेगा। यहाँ संतों का धैर्य है, यहाँ वे हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु में विश्वास रखते हैं। प्रकाशित वाक्य 14:6-12।
प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय में ठीक वही संदेश बाबुल के पतन की घोषणा करता है।
और इन बातों के बाद मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा, जिसके पास बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसकी महिमा से प्रकाशित हो गई, और उसने बड़े शब्द से जोर से पुकार कर कहा, महान बाबुल गिर पड़ा, गिर पड़ा और दुष्टात्माओं का निवास स्थान बन गया और हर एक अशुद्ध आत्मा का ठिकाना और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का पिंजरा हो गया, क्योंकि सब जातियों ने उसके व्यभिचार के कोप के दाखमधु को पिया है और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया और पृथ्वी के व्यापारी उसकी विलासिता की प्रचुरता से धनी हो गए हैं। और मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना जो कहता था, हे मेरे लोगों, उससे निकल आओ ताकि तुम उसके पापों के सहभागी न बनो और उसकी विपत्तियों में से न पाओ, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और परमेश्वर ने उसकी अधर्मताओं को स्मरण किया है। प्रकाशित वाक्य 18:5।
भविष्य सूचक इतिहास की रेखा, या यूं कहें कि अध्याय 18 में अपनी महिमा से पृथ्वी को आलोकित करने वाले स्वर्गदूत द्वारा प्रदर्शित घटनाक्रम उन घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो न्याय के समापन, अनुग्रह काल के समापन और अंतिम सात विपत्तियों तक ले जाती हैं। अध्याय 18 में प्रस्तुत भविष्य सूचक इतिहास अध्याय 14 के तीन स्वर्गदूतों द्वारा प्रस्तुत भविष्य सूचकमा की रेखा के समानांतर चलता है।
परमेश्वर ने प्रकाशित वाक चादर के संदेशों को भविष्यवाणी के क्रम में उनका स्थान दिया है, और उनका कार्य इस पृथ्वी के इतिहास के अंत तक रुकना नहीं है। पहले और दूसरे स्वर्गदूतों के संदेश इस समय के लिए अब भी सत्य है, और जो आगे आता है उसके साथ समानांतर चलने हैं। तीसरा स्वर्गदूत अपनी चेतावनी ऊंचे स्वर में घोषित करता है। इन बातों के बाद यूहन्ना ने कहा, मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके पास बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसकी महिमा से प्रकाशित हो गई। इस आलोक में तीनों संदेशों का प्रकाश संयुक्त है। द एट 1888 मटेरियल्स 1304।
14वें अध्याय के तीन स्वर्गदूत जो आकाश के मध्य उड़ते हैं एक विश्वव्यापी संदेश का प्रतीक है, जो पशु की छाप और अनुग्रह काल के समापन पर आकर समाप्त होता है। 18वें अध्याय में पूरी पृथ्वी उस स्वर्गदूत की महिमा से आलोकित हो जाती है जिसका संदेश भी अनुग्रह काल के समापन पर समाप्त होता है।
14वें अध्याय में 3 स्वर्गदूतों द्वारा प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया संदेश और 18वें अध्याय में उतरने वाले स्वर्गदूत द्वारा प्रस्तुत किया गया संदेश एक ही चेतावनी संदेश के 2 चित्रण हैं। बाइबल में कुछ भी अनावश्यक नहीं है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। ये तथ्य कि यूहन्ना ने इसी संदेश की पहचान 1 से अधिक बार की है, संदेश के महत्व पर बल देता है और ये शिक्षण की दिव्य विधि का उदाहरण है जिसे बाइबलीय नियम दोहराओ और विस्तार करो कहा जाता है। भविष्यवाणी के इतिहास की 2 धाराओं को साथ लाने से वे सत्य प्रकट होते हैं जो जब प्रत्येक को दूसरे से अलग करके देखा जाए तो किसी में भी पहचाने नहीं जाते। आज यदि आप एक ही घटना के 2 गवाहों को अदालत में गवाही के लिए लाएं, तो वे अपनी राजनीतिक या सामाजिक विचारधारा के आधार पर एक दूसरे के विपरीत बयान दे सकते हैं, परंतु बाइबल के गवाहों के साथ ऐसा नहीं है। वे हमेशा सहमत होते हैं और यदि आपको लगे कि वे सहमत नहीं हैं, तो आप किसी बात को गलत ढंग से देख रहे हैं।
जिन 2 चित्रणों पर हम विचार कर रहे हैं वे वही चेतावनी संदेश हैं जिन्हें मलाकी की पुस्तक नबी एलिया की वापसी के रूप में प्रस्तुत करती है। ये 3 संदेश अनुग्रह काल के अंत से पहले आते हैं क्योंकि भविष्यवाणी की इन 3 रेखाओं में निहित चेतावनी संदेश केवल अनुग्रह काल के अंत से पहले दिए ही नहीं जाते, बल्कि अनुग्रह काल का अंत ही उनका संदर्भ बिंदु, यूं कहें कि विषय है। वास्तव में यदि किसी नबी द्वारा कोई भी चेतावनी संदेश प्रचारित या चित्रित किया जाए तो वो वही चेतावनी है जो प्रकाशित वाक्य 14, 18 और मलाकी की एलिया संबंधी भविष्यवाणी में है।
भविष्यवाणी की ये 3 धाराएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, यह आसानी से दिखाया जा सकता है। इसके साथ ही बाइबिलीय भविष्यवाणी में जानकारी के 2 मुख्य स्रोत हैं। एक स्रोत है संसार के अंत में घटित होने वाली घटनाओं के क्रम की पहचान। जानकारी का दूसरा स्रोत है उन संदेशों से संबंधित भविष्य वक्ताओं की गतिविधियों का चित्रण जो भविष्य की घटनाओं की रूपरेखा बताते हैं।
इन विचारों के संदर्भ में विचार करने योग्य 2 नियम हैं। पहला ये है कि सभी भविष्य वक्ता संसार के अंत के बारे में बोलते हैं जहाँ परिवेक्षा समाप्त होती है।
प्राचीन भविष्यद्वक्ताओं में से प्रत्येक ने अपने समय के लिए कम और हमारे लिए अधिक कहा, इसलिए उनकी भविष्यवाणियां हमारे लिए प्रभावी हैं। अब ये सब बातें उन पर उदाहरण के रूप में हुई और वे हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई हैं जिन पर संसार के अंत आ पहुंचा है। 1 कुरिन्थियों 10:11, उन्होंने ये बातें अपने लिए नहीं परंतु हमारे लिए सेवकाई की जो अब तुम्हें उन लोगों के द्वारा बताई गई हैं जिन्होंने स्वर्ग से भेजे गए पवित्र आत्मा के साथ तुम्हें सुसमाचार सुनाया, जिन बातों में स्वर्गदूत झांक कर देखना चाहते हैं। 1 पतरस 1:12। बाइबल ने अपने खजाने इस अंतिम पीढ़ी के लिए संचित करके उन्हें एक साथ बांध दिया है। पुराने नियम के इतिहास की सभी महान घटनाएं और गंभीर कार्यवाहियों इन अंतिम दिनों में कलीसिया में पहले भी 2 हराई गई हैं और अब भी दोहराई जा रही हैं। चयनित संदेश पुस्तक 3:3-3।
बाइबल के सभी भविष्य सूचक संदेश हमारे लिए प्रभावी हैं, जिन पर संसार के अंत आ चुके हैं। वो नियम एक अन्य नियम के साथ मिलकर जो उन विषयों की पहचान करता है जिन्हें पवित्र आत्मा ने ढाला है, भविष्यवाणी के दिए जाने में भी और साथ ही चित्रित घटनाओं में इस दावे को और बल देते हैं कि किसी भी दी गई भविष्यवाणी की शुरुआत की भविष्य सूचक घटनाएं उसकी समाप्ति की भविष्य सूचक घटनाओं का प्रतिरूप बनती है और उनके समानांतर चलती है।
परमेश्वर के वचन का और भी गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है, विशेषकर दानियल और प्रकाशित वाक्य पर ऐसा ध्यान दिया जाना चाहिए जैसा हमारे कार्य के इतिहास में पहले कभी नहीं दिया गया। हम कुछ बातों में रोमी सत्ता और पोपाई के विषय में कम कह सकते हैं, परंतु हमें उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए जो नबियों और प्रेरितों ने परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अधीन लिखा है। पवित्र आत्मा ने भविष्यवाणी के दिए जाने में भी और वर्णित घटनाओं में भी बातों को इस प्रकार विन्यस्त किया है कि ये सिखाया जाए कि मानवीय प्रतिनिधि को दृष्टि से दूर रखा जाए, वो मसीह में छिपा रहे और स्वर्ग के प्रभु परमेश्वर तथा उसकी व्यवस्था का महिमा मंडन किया जाए। दानियल की पुस्तक पढ़ो, वहां दर्शाए गए राज्यों के इतिहास को बिंदु दर बिंदु स्मरण करो। सेवको हेतु साक्ष्य अप्राउण 12।
पवित्र आत्मा ने भाव विश्ववाणी देने में और चित्रित घटनाओं में दोनों में मामलों को इस प्रकार आकार दिया है। भविष्यवाणी देने में और चित्रित घटनाओं में मामलों को पवित्र आत्मा द्वारा इस प्रकार आकार दिया गया है कि भविष्यवाणी का दिया जाना और चित्रित घटनाएं दोनों को प्रेरणा प्राप्त माना जाए और संसार के अंत के भविष्यवाणी संबंधी चित्रण पर लागू किया जाए। जॉन को गैब्रियल से भविष्यवाणी दी गई और उसे इसे एक पुस्तक में लिखकर कलीसियाओं को भेजने के लिए कहा गया। तब उसे रोम द्वारा सताया जा रहा था, उसे ऐसे तरीके से निर्वासित किया गया जो आज की दुनिया में जिसे ब्लैक साइट कहा जाता है उसके समकक्ष था। उस इतिहास में जॉन मानव जाति से उतना ही अलग थलग था जितना ग्वांतानामो बे में कोई भी कैदी होता है। यूहन्ना बताता है कि ये दर्शन तब हुआ जब वो सातवें शत दिन के सब्त पर आराधना कर रहा था, जो प्रभु का दिन है,
क्योंकि मनुष्य का पुत्र विश्राम के दिन का भी प्रभु है। मत्ती 12:8।
आत्मा में आराधना करते हुए उसने अपने पीछे एक बड़ी आवाज सुनी,
मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और क्लेश में और यीशु मसीह के राज्य और धीरज में सहभागी भी हूं, परमेश्वर के वचन के कारण और यीशु मसीह की गवाही के कारण पतमोस कहलाने वाले टापू में था। प्रभु के दिन मैं आत्मा में था और अपने पीछे तुरही के समान एक बड़ी ध्वनि सुनी जो कहती थी, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और अंतिम, और जो कुछ तू देखता है उसे एक पुस्तक में लिख और उसे एशिया की 7 कलीसियाओं को भेज, इफिसुस को और स्मिरना को और पर्गमुस को और थुआतीरा को और सार्दिस को और फिलाडेल्फिया को और लाओदिकिया को। प्रकाशित वाक्य 1:9-3 सिंज प्रकाशित येता कहता है।
यूहन्ना उसका परिवेश और वर्णित परिस्थितियां उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है जो सातवें दिन के सप्त का उपासक होने के कारण सताया जा रहा है, और साथ ही इसलिए भी कि वो बाइबल और एलन वाइट की रचनाओं अर्थात यीशु की गवाही दोनों पर विश्वास करता है। वो अपने पीछे एक बड़ी आवाज सुनता है जिसे देखने के लिए वो मुड़ता है, और ऐसा करते हुए वो दुनिया के अंत में उस सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने पीछे से आती आवाज सुनते हैं, ये मार्ग है, इसी में चलो। दुनिया के अंत में भविष्यवाणी की सभी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं।
प्रकाशित वाक्य में बाइबल की सभी पुस्तकें मिलती हैं और समाप्त होती हैं। प्रेरितों के काम 5:22।
जो कोई भी भविष्यद्वक्ता अपने पीछे से कोई आवाज सुनता है वो संसार के अंत में परमेश्वर की प्रजा के चित्रण में यूहन्ना के साथ मेल खाता है। यूहन्ना ने अपने पीछे से एक आवाज सुनी जिसने उसे निर्देश दिए। यशाया ने भी निर्देश देने वाली एक आवाज सुनी,
और इस कारण प्रभु प्रति प्रतीक्षा करेगा कि वो तुम पर अनुग्रह करे, और इस कारण वो महिमित होगा कि वो तुम पर दया करे, क्योंकि प्रभु न्याय का परमेश्वर है, धन्य हैं वे सब जो उसकी बाँट जोहते हैं।
क्योंकि लोग यरूशलेम में सियोन पर निवास करेंगे, तुम अब और न रोओगे, तुम्हारी पुकार की आवाज़ पर वो तुम पर बहुत अनुग्रह करेगा, जैसे ही वो उसे सुनेगा वो तुम्हें उत्तर देगा, और यद्यपि प्रभु तुम्हें संकट की रोटी और क्लेश का पानी दे तो भी तुम्हारे शिक्षक अब फिर किसी कोने में नहीं हटाए जाएंगे, परंतु तुम्हारी आंखें तुम्हारे शिक्षकों को देखेंगी और तुम्हारे कान तुम्हारे पीछे से ये वचन सुनेंगे, यह मार्ग है, इसी में चलो। जब तुम दाहिनी ओर मुड़ोगे और जब तुम बाईं ओर मुड़ोगे। यशाया 30:18-21।
परमेश्वर की शेष प्रजा अपने पीछे से एक आवाज सुनती है जो बताती है कि उन्हें किस मार्ग पर चलना चाहिए। फिर उन्हें ये निर्णय करना होता है कि वे उसकी सुनेंगे या नहीं। यूहन्ना और यशाया जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वे जगत के अंत के वे लोग हैं जो प्रभु के विलंब करने के समय उसकी प्रतीक्षा करते हैं, और यशाया हमें बताता है कि वो इसलिए विलंब करता है क्योंकि वो न्याय का परमेश्वर है। 1798 में मिलेराइट इतिहास की शुरुआत से लेकर रविवार के कानून पर एडवेंटिज्म के लिए अनुग्रह काल के समापन तक परमेश्वर स्वर्गीय पवित्र स्थान में न्याय को निष्पादित कर रहा है। प्रतिज्ञा ये है कि न्याय काल के दौरान जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे धन्य होंगे। 10 कुवारियों के दृष्टांत में दूल्हे की प्रतीक्षा करने वाली कुवारियां प्रतीक्षा करने के कारण धन्य ठहराए गए परमेश्वर के लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दसों सो गई और फिर आधी रात को एक संकट आता है जो सोती हुई कुंवारियों को दो वर्गों में बांट देता है। एक वर्ग ने अपने पीछे से आती आवाज सुनी और उस आवाज को देखने के लिए मुड़ा, जिसने उन्हें यह बताया कि किस मार्ग पर आगे बढ़ना है, और दूसरा वर्ग मुड़कर उस आवाज को सुनने से इनकार कर देता है। इस तथ्य के बावजूद कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बार बार दिया गया संदेश है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।
मत्ती तिचिस में वर्णित दस कुंवारियों का दृष्टांत एडवेंटिस्ट लोगों के अनुभव को भी दर्शाता है। महान विवाद 390।
यूहन्ना उन एडवेंटिस्ट लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो भविष्य को समझने के लिए अतीत की ओर मुड़ते हैं। जब वे, जैसा यूहन्ना ने किया, अपने पीछे से एक वचन सुनते हैं, तो उस वचन में इस समान घटना के बारे में यशाया की गवाही में दी गई शिक्षा भी सम्मिलित होती है। यशाया की शिक्षा थी, ये मार्ग है, इसी पर चलो, चाहे तुम दाहिनी ओर मुड़ो या बाईं ओर। दानियल 12 में वर्णित बुद्धिमान कुंवारियां संसार के अंत में ज्ञान की वृद्धि को समझती हैं, क्योंकि उन्होंने उस जीवनदायी ज्ञान को समझने के लिए, जिसकी मुहर खोली गई थी, वचन में इधर उधर दौड़ लगाई थी।
परंतु हे दानियल, इन वचनों को बंद कर और पुस्तक को अंत के समय तक मुहर बंद कर। बहुत से लोग इधर उधर दौड़ेंगे और ज्ञान बढ़ेगा। दानियल 12:4।
जिन भविष्यद्वक्ताओं पर हम विचार कर रहे हैं, वे उस इतिहास के में सेवेंथ डे एडवेंटिस्टों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां न्याय अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है और अनुग्रह का काल बंद हो जाता है। जिन्हें बुद्धिमान कुआरियां के रूप में दर्शाया गया है, वे अपने पीछे से ये कहते हुए एक वाणी सुनती हैं, यह मार्ग है, इसी पर चलो, और वो वादा करता है कि जब वे बाएं या दाहिने मुड़ेंगी तो वो उन्हें मार्ग में निर्देश देगा। इधर उधर दौड़ना, जैसा कि पुस्तक की मुहर खुलने पर बुद्धिमान कुआरियां करती हैं, बाइबल अध्ययन का एक प्रतीक है। प्रकृति हमें बताती है कि दौड़ने से पहले चलना सीखना पड़ता है, और यशाया की गवाही कहती है कि यदि तुम अपने पीछे की वाणी सुनो तो वो उसके वचन के अध्ययन में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, चाहे तुम पुराने नियम बाएं की ओर मुड़ो या नए नियम दाहिने की ओर। बाइबल खोलो और वो अपनी वाणी से तुम्हें मार्ग दिखाएगा। परंतु संसार के अंत में सेवेंथ डे एडवेंटिस्टों के लिए इसका ये अर्थ भी है कि वो तुम्हारा मार्गदर्शन तब भी करेगा जब तुम बाइबल बाएं खोलो और जब तुम भविष्यद्वाणी की आत्मा दाहिने खोलो।
जब यिर्मयाह की गवाही जोड़ी जाती है तो चलने का तरीका और भी अधिक विशिष्ट हो जाता है।
प्रभु यों कहता है, मार्गों पर खड़े हो जाओ और देखो, और प्राचीन पथों के विषय में पूछो कि अच्छा मार्ग कहाँ है, और उसी में चलो, तब तुम्हें अपनी आत्माओं के लिए विश्राम मिलेगा। पर उन्होंने कहा, हम उसमें नहीं चलेंगे, मैंने तुम्हारे ऊपर पहरेदार भी बिठाए। ये कहते हुए तुरही की ध्वनि सुनो, पर उन्होंने कहा, हम नहीं सुनेंगे। इसलिए हे जातियों सुनो, और हे मंडली जानो कि उनके बीच क्या है। हे पृथ्वी सुनो, देखो मैं इस प्रजा पर विपत्ति लाऊंगा, अर्थात उनके विचारों का फल, क्योंकि उन्होंने मेरे वचन नहीं माने, न मेरी व्यवस्था को, परंतु उसे ठुकरा दिया। यिर्मयाह 6:16-19।
इस अंश में उपासकों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग सभी मार्गों पर विचार करता है और चलने के लिए पुराने पथों को चुनता है। वे अन्य सभी संभावित मार्गों में से भला मार्ग चुनने में सक्षम थे, क्योंकि वे वही लोग हैं जिन्होंने अपने पीछे से आने वाली आवाज सुनी और उस आवाज ने उन्हें बताया, यही मार्ग है, इसी पर चलो। जॉन उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो पीछे से आने वाली पुराने पथों से आती आवाज को सुनते हैं।
यहोवा यों कहता है, मार्गों पर खड़े हो और देखो, और प्राचीन पथों के विषय में पूछो कि भला मार्ग कहाँ है, और उसी में चलो। यिर्मयाह 6:16। कोई भी हमारी आस्था की नींवों को उखाड़ने का प्रयास न करे। वे नींवे जो हमारे कार्य के प्रारंभ में वचन के प्रार्थनापूर्ण अध्ययन और प्रगटीकरण द्वारा डाली गई थीं, इन्हीं नींवों पर हम पिछले 50 वर्षों से निर्माण कर रहे हैं। लोग ये समझ सकते हैं कि उन्होंने कोई नया मार्ग पा लिया है, और वे उस नींव से भी अधिक मजबूत नींव डाल सकते हैं जो पहले ही डाली जा चुकी है। परंतु ये एक बड़ा धोखा है। जो नींव डाली जा चुकी है, उसके सिवा कोई मनुष्य अन्य कोई नींव नहीं डाल सकता। अतीत में बहुतों ने नए विश्वास का निर्माण और नए सिद्धांतों की स्थापना का उद्यम किया है, परंतु उनकी इमारत कितने समय तक टिक सकी, वो शीघ्र ही गिर गई क्योंकि उसकी नींव शिला पर नहीं रखी गई थी। क्या प्रारंभिक चेलों को मनुष्यों की बातों का सामना नहीं करना पड़ा? क्या उन्हें झूठे सिद्धांतों को नहीं सुनना पड़ा और फिर सब कुछ कर लेने के बाद ये कहते हुए दृढ़ खड़े नहीं रहना पड़ा? जो नींव डाली गई है उसके सिवाय कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, 1 कुरिन्थियों 3:11। इसलिए हमें अपने विश्वास के सारंभ को अंत तक दृढ़ता से थामे रखना है। परमेश्वर और मसीह ने इस प्रजा के लिए सामर्थ्य के वचन भेजे हैं जो उन्हें संसार से निकालकर एक एक बिंदु करके वर्तमान सत्य के स्पष्ट प्रकाश में ले आए हैं। पवित्र आग से स्पर्शित होंठों से परमेश्वर के दासों ने यह संदेश प्रचारित किया है। दैवीय वाणी ने घोषित किए गए सत्य की प्रामाणिकता पर अपनी मुहर लगा दी है। टेस्टिमनीज Vol. 8, 296-297।
पर यिर्मयाह के कथन में एक और समूह है और जिन्हें वो मंडली कहता है। उन्होंने एक ऐसा घर बनाया जो एक नए विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है और वो घर गिर जाता है क्योंकि उसे चट्टान पर नहीं बनाया गया था। वो घर सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया है, या जैसा कि यूहन्ना उसी कलीसिया को शैतान की सभा कहता है।
सुनने से इनकार करना उसके वचनों और उसकी व्यवस्था को अस्वीकार करना है। लौटने और पुराने मार्गों पर चलने के विरुद्ध उनके विद्रोह के कारण और पहरेदार की तुरही के संदेश को सुनने से इनकार करने के कारण परमेश्वर उस प्रजा पर विपत्ति लाने वाला है जिसे यिर्मयाह दुष्ट भा कहता है। लाओदिकिया की सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के साथ परमेश्वर कैसे व्यवहार करेगा, ये बाइबल की भविष्यवाणियों का विषय है। भविष्यद्वक्ता होशे जब ये बताता है कि उन्हें क्यों अस्वीकार किया गया है, तब वो दुष्ट सभा की विशेषताओं पर प्रकाश डालता है।
मेरे लोगों का नाश ज्ञान के अभाव से होता है, क्योंकि तुमने ज्ञान को अस्वीकार किया है। मैं भी तुम्हें अस्वीकार करूंगा ताकि तुम मेरे लिए याजक न रहो। क्योंकि तुमने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को भूल दिया है, मैं भी तुम्हारे बच्चों को भूल जाऊंगा। होशे 4:6।
उन्हें ज्ञान की कमी के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है जो उस संदेश का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी मोहर अंत के समय खोली जाती है। इस पद में परमेश्वर यहाँ अपने लोगों के साथ अपना वाचा संबंध समाप्त कर रहा है, क्योंकि वो उन्हें सीधे मेरे लोग कहकर बुलाता है। क्योंकि उन्होंने मसीह को ठुकराया है और उसकी व्यवस्था को बुला दिया है, वे परमेश्वर के लिए याजक नहीं होंगे। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ वाचा में प्रवेश करते हैं तो वो उन्हें याजक और राजा बनाता है। जब परमेश्वर ने प्राचीन इसराइल के साथ वाचा बांधी तब उसने मूसा के द्वारा कहा,
अब इसलिए यदि तुम सचमुच मेरी वाणी को मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम मेरे लिए विशेष संपत्ति ठहरोगे, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है और तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। ये वे बातें हैं जिन्हें तू इसराइलियों से कहेगा। निर्गमन 19:5।
जब परमेश्वर ने ईसाई कलीसिया के साथ वाचा बांधी तो उन्होंने पतरस के द्वारा कहा,
पर तुम चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और विशिष्ट प्रजा हो, ताकि तुम उसके गुण प्रकट करो जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। तुम जो पहले कोई प्रजा न थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, जिन्हें दया नहीं मिली थी पर अब दया मिली है। 1 पतरस 2:2-10।
इन पदों में पतरस ये बताता है कि कैसे परमेश्वर की चुनी हुई वाचा प्रजा रहे प्राचीन इसराइल से मसीही कलीसिया तक परिवर्तन हुआ, जब वो कहता है, पहले तुम लोग कोई प्रजा नहीं थे पर अब तुम परमेश्वर की प्रजा हो। जब यहूदियों ने परमेश्वर से अपना नाता तोड़ लिया तो प्रभु ने मसीही कलीसिया के साथ वाचा बांधी। प्रभु से वैवाहिक संबंध में रहते हुए दोनों को याजकों का राष्ट्र माना गया। याजक के रूप में अस्वीकार किया जाना इस बात का संकेत है कि आप कभी वाचा की प्रजा थे। सेवंथ डे एडवेंटिस्टों ने एडवेंटिस्ट इतिहास की शुरुआत में प्रभु के साथ वाचा में प्रवेश किया। मरुभूमि की कलीसिया धर्म सुधार से निकली, पर उसने मिलराइट संदेश को अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार पहले और दूसरे स्वर्गदूतों के संदेशों के इतिहास के दौरान उसने अपने को परमेश्वर से अलग कर लिया। अंतिम पृथक्करण दूसरे स्वर्गदूत के आगमन के साथ हुआ और घोषणा ये थी कि वो अब मसीह की पुत्री नहीं रही बल्कि बाबुल की पुत्री बन गई। तुरंत बाद मध्यरात्रि की पुकार के दौरान परमेश्वर ने अपनी नई दुल्हन को वाचा विवाह के लिए बुलाया। प्राचीन इज़राइल के लिए वाचा का प्रतीक रही दो पट्टिकाएं 10 आज्ञाओं की 2 पत्थर की पट्टिकाएं थीं और आध्यात्मिक आधुनिक इज़राइल के लिए 2 पट्टिकाएं हबक्कूक की 2 पट्टिकाएं हैं जिनका प्रतिनिधित्व 1843 और 1850 के चार्ट करते हैं। वाचा के लोग जिन्हें प्रेरणा ने बार बार लाओदिकिया के रूप में पहचाना है प्राचीन मार्गों को अस्वीकार कर चुके हैं, अपने पीछे से आने वाली आवाज को सुनने से इनकार किया है और इसलिए जब वे प्रभु के मुख से उगल दिए जाते हैं तो प्राचीन इज़राइल का अंतिम इतिहास दोहराते हैं। जिन्हें वो मेरे लोग कहता है उनके साथ ऐसा क्यों होता है। 10 कुवारियों का 10 शांत जो एडवेंटिज्म की अनुभव को दर्शाता है 2 बार पूरा होता है, एक बार एडवेंटिज्म की शुरुआत में और फिर उसके अंत में। सिस्टर व्हाइट सिखाती है कि ये दृष्टांत अक्षरशः पूरा हो चुका है और अक्षरशः पूरा होगा और ये भी कि इस दृष्टांत को सदा वर्तमान सत्य के रूप में समझा जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे तीसरा स्वर्गदूत।
मेरा ध्यान अक्सर 10 कुंवारियों के दृष्टांत की ओर दिलाया जाता है जिनमें से 5 बुद्धिमान थीं और 5 मूर्ख। ये दृष्टांत अक्षरशः पूरा हुआ है और आगे भी होगा क्योंकि ये इसी समय पर विशेष रूप से लागू होता है और तीसरे स्वर्गदूत के संदेश की तरह ये पूरा हो चुका है और समय के अंत तक वर्तमान सत्य बना रहेगा। रिव्यू एंड हेराल्ड 19 अगस्त 1890।
मिलराइट एडजेक्टिज्म ने 1834 की असफल भविष्यवाणी और 22 अक्टूबर 1844 की सही भविष्यवाणी के बीच दृष्टांतम में बताई गई प्रतीक्षाओं को पूर किया। इस इतिहास के भविष्य सूचक विवरण अनेक और महत्वपूर्ण हैं, पर मेरा उद्देश्य केवल इतना बताना है कि जैसा अभी सिस्टर व्हाइट ने कहा, 10 कुंवारियों का दृष्टांत सीधे तीसरे स्वर्गदूत से जुड़ा हुआ है।
27 से 23 अक्टूबर 1844 तक पहले स्वर्गदूत का संदेश न्याय के आरंभ की घोषणा करता रहा। न्याय आरंभ होने से ठीक पहले 10 कुंवारियों के दृष्टांत की आधी रात की पुकार पूरी हुई, इसलिए जब तीसरा स्वर्गदूत न्याय के समापन की घोषणा करेगा तब आधी रात की पुकार की घोषणा एक बार फिर दोहराई जाएगी। ये पहचान कि प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं ने परमेश्वर के संदेश को अस्वीकार कर दिया था और इस प्रकार वे बाबुल की बेटियां बन गई थीं, दूसरे स्वर्गदूत के संदेश का आगमन और उस दृष्टांत में जो अक्षरशः पूरा हो रहा था प्रतीक्षा काल की शुरुआत थी। प्रभु 1843 में वापस नहीं आए, उन्होंने कुंवारी कन्याओं की परीक्षा लेने और उन्हें आशीष देने के लिए विलंब किया। प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं को बाबुल की बेटियां ठहराने वाले दूसरे स्वर्गदूत की घोषणा उन पतित कलीसियाओं में अभी भी रहने वालों के लिए ये बुलाहट थी कि वे बाहर निकलें और मिलरवादियों तथा भविष्यवाणियों की उनकी समझ के साथ खड़े हों। एक्सेटो की शिविर सभा में सैमुअल स्नो ने 22 अक्टूबर 1894 को प्रभु के आगमन की पुष्टि के लिए आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत किए और मध्यरात्रि की पुकार का संदेश ज्वारीय लहर की तरह देश भर में छा गया। फिर 22 अक्टूबर 1894 की महान निराशा के समय तीसरा स्वर्गदूत आ पहुंचा। ये प्रारंभिक इतिहास का एक संक्षिप्त सार था जिसमें मैंने कई बिंदु छोड़ दिए हैं ताकि हम जिस विषय को संबोधित कर रहे हैं उससे अधिक प्रासंगिक प्रतीत होने वाले कुछ बिंदुओं को अलग कर सकूं। हम इन विचारों को अगले लेख में जारी रखेंगे।